के बीच के वहां बहुत ही सार बात आपको बतलाई जाती है। वो एक एक बात ऐसी है कि जो कल्याण करने वाली, मुक्ति के देने वाली, या यूं कहो कि परम पद की प्राप्ति कराने वाली, अपनों जो सत्व है, अपनों जो हक है, जैसे शरीर है, जैसे अपने इंद्रिया है, या अपना जो पैसा है, बल है, ऐश्वर्य है, जो अपना अधिकार की चीज, वो चीज एक प्रकार से दूसरों की सेवा के मां लगानी बहुत ही उत्तम काम है। और वो भी निष्काम भाव से लगाऊं। निष्काम भाव को मतलब यह है कि बदले में स्वार्थ की इच्छा नहीं करनी, कोई प्रकार से स्वार्थ की इच्छा उसको बदले में नहीं करनी, और अपनी तरफ से अपने सत्व को दूसरा ने देने की चेष्टा रखे और लेने की चेष्टा नहीं रखे। हर एक प्रकार से ये जो निष्काम जो भाव है, इससे आत्मा की बहुत ही शुद्धि हो जाए। और समझो कि पदार्थ जो है, रुपया जो है, उसकी अपेक्षा ज्यादा दामी चीज है अपना शरीर। अपना जो शरीर जो है, अपने शरीर को जो बल है, अपने शरीर के वहां जो बुद्धि है, यानी विवेक और ज्ञान है, इस बुद्धि और विवेक के द्वारा दूसरों को एक रूप से हितकर्म सेवा करनी, अपने बल से परिश्रम से दूसरों की सेवा करनी, और अपने शरीर से, इंद्रियों से दूसरे की सेवा करनी, वाणी से दूसरे को भलो कर लो, समझो हाथों से दूसरे को भलो कर लो, अपने संकेत से दूसरे को भलो कर लो, और कुछ भी नहीं हो तो मन से दूसरे को भलो कर लो। अपने पास रुपया नहीं है तो एक प्रकार से शरीर से भलो कर लो, मैं रुपया से भी ज्यादा दामी चीज है। और शरीर जो है एक प्रकार से उसी के अंदर वाणी है, वाणी से भलो कर लो, दूसरे को उपकार कर लो, और उससे भी ज्यादा दाम है कि मन से, अपने बुद्धि से, आप विचार के द्वारा दूसरे को हित कर लो, तो मन दामी चीज है। मन से थी जो आदमी कहकर तन मन धन, तो तन मन धन में धन जो है वैसे दामी चीज है तन, धन से, और तन से भी दामी चीज है मन। मन अपने जिस काम में लगा दियो तो तन और धन तो अपने आप ही लग गए, या शरीर जिस काम में अपने आप लगा दियो तो एक प्रकार से धन तो मैं आप ही लग गए। इस वास्ते धन से ज्यादा दामी चीज तन है और तन से ज्यादा दामी चीज मन है। तो इस प्रकार से दूसरों की सेवा के लिए अपना अर्पण कर दे, और वो निष्काम भाव से कर। निष्काम माने बदलो कुछ भी नहीं चाहो, न मान बढ़ाई चाहवा, न स्वर्ग चाहवा, और न समझो कि इस लोक का भोग चाहवा, बदलो में कुछ भी नहीं चाहो, अपनो कर्तव्य समझ करके करे, तो बहुत शीघ्र रसो कल्याण होते। इससे भी शीघ्र कल्याण होने को रस तो यो है कि सब में भगवत बुद्धि करके उनकी सेवा करे, इससे बढ़कर चीज यह है। भगवत बुद्धि से टी भी और ऊंचो भाव यो है कि भगवत बुद्धि से तो करे ही, और साथ साथ के वहां हे प्रभु ये आपकी चीज आपके काम में लगाई जावे, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। पर इससे भी और दामी चीज वो है कि उस समय के बीच के मां एक प्रकार से श्रद्धा प्रेम से करे, मुग्ध हो जावे एक प्रकार से कि जैसे कोई भगवान की वास्तव में सेवा करने से प्रसन्नता हुए, इसी प्रकार की प्रसन्नता में समय के बीच के मावे, हाँ सांस करके, नाच नाच करके, प्रेम से सेवा मिल गई तो भगवान ही मिल गया। भगवान की सेवा जो है तो भगवान से बढ़कर भी कही जावा तत्युक्ति नहीं, क्योंकि भगवान की सेवा मिल गई ना भगवान तो गंतर गति आ गया। तो यह जो चीज है बहुत उत्तम है, और अपना मन तन धन जो कुछ है ये भगवान का ही है। तो इस भाव से भी भगवत अर्थ बुद्धि से भगवान के लिए सब अर्पण कर दे, भगवान की चीज अपनी सारी चेष्टा जो है सो भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान के लिए ही की जावे, भगवान में प्रेम होने के लिए की जावे, भगवान की प्राप्ति के लिए की जावे, तो वो निष्काम ही है। और इससे भी ऊंचे दर्जे वो है कि एक प्रकार से अपना वास्तव में अपना सर्वस्व भगवान के समर्पण कर देवा। और असली समर्पण वो है कि एक प्रकार से भगवान बने स्वीकार कर ले। स्वीकार की कसौटी क्या है कि मैं को तन मन धन सब समय के मां भगवान के लिए स्वाभाविक की लगतो रहे। एक आदमी तो समझो कि आपने उत्तम जो काम कर है यज्ञ दान तप सेवा पूजा तीर्थ व्रत मैं कर है, और एक करे नहीं मैं को स्वभाव यह सो जाओ कि बस स्वाभाविक हो स्वाभाविक ही उससे होने लग जावे, तो वो भगवान स्वीकार कर भगवान का अपना सर्वस्व अर्पण करे और भगवान इस बात में स्वीकार कर ली, इस कसौटी से यो निर्णय हो कि आपने समझो कि अपने से स्वाभाविक होने लग जावे, अपने बस की बात ही नहीं रहे। जैसे छोटे बच्चों और माँ के स्तन के पास ले जावे तो बना में स्वाभाविक ही दूध जो है सो माँ के स्तन में आ जावे। जैसे गाय को बाछो गाय के स्तन के पास ले जावे और मुंह लगाता ही गाय पाव से आवे तो उसमें दूध आकर के भर जावे स्वाभाविक ही, हमें कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं, वो वास्तव भाव है। जैसे बच्चों के लिए और बच्चा के लिए जैसे माँ को और गाय को एक बात स्वभाव है, इस प्रकार से थी भगवान को समझो कि अपने सब के लिए बात स्वभाव है, और मनुष्यों के भीतर के बीच के माँ भी समझो कि भगवान के प्रति भी बात स्वभाव है। जैसे यशोदा मैया को श्री कृष्ण जी के लिए तो वो बात स्वभाव है। और मैं जो आपने बात बतलाई वो आत्मनिवेदन की बतलाई, आत्मनिवेदन माना अपना सर्वस्व भगवान के समर्पण करने की बात, ये एक प्रकार से सर्वस्व समर्पण करने की जो बात है ये भगवान की प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ उपाय है। भगवान की चीज भगवान के अर्पण कर दी, अपने तन मन धन सब भगवान के समर्पण कर दी। जैसे गोपियां जो है सो सर्वस्व अपने भगवान के समर्पण कर दी, तब दूसरी बात बतलाई जावे। दूसरी बात यह है कि ज्ञान को जो मार्ग है जो कि आज प्रातःकाल बतलाये थो कि एक विज्ञान गण परमात्मा के सिवा दूसरी वस्तु है ही नहीं, सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म को जो विषय, वो जो ज्ञान को जो मार्ग है कि एक विज्ञानान घन परमात्मा ही है, इस प्रकार को जो एक अनुभव है वो ज्ञान को मार्ग है। भगवान जो है सो ज्ञान स्वरूप है, जिसके लिए बताया कि ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमस्य परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञान गम्यं हृदि सर्वसमिष्टितम्। वो परमात्मा ज्योतियों का भी ज्योति है, सारी ज्योतियों का प्रकाशक है, साक्षात परमात्मा समझो कि सूर्य चंद्रमा अग्नि आदि के मार इनकी ज्योतियों के बीच के मां समझो कि अपने भगवान है तो व्यापक हो रहे हैं, उन्हीं से इन सब की ज्योतियां है। ये जो भगवान को एक ज्ञान स्वरूप को जो ध्यान है, चेतन स्वरूप को जो ध्यान है, और हम लोगों के बुद्धि के भीतर में जो ज्ञान है ये भगवान से ही ज्ञान है। इस वास्ते भगवान के बुद्धि मतों की बुद्धि है तो बुद्धिमानों के मां जो बुद्धि है वो मैं हूं, तो वो भगवानी ज्ञान स्वरूप के बीच में प्रणीत है, भगवानी चेतन स्वरूप के बीच के माँ, जीवों के भीतर में जो चेतनता जागृति है भगवान से ही है। और तम से परे, तम से भगवान पर है, पर माने समझो कि जैसे अंधकार है तो अंधकार से पर क्या है कि प्रकाश, तो जो प्रकाश है भगवानी प्रकाश के रूप में परिणित हुए। और तम माने है अज्ञान को, अज्ञान से परे क्या है कि ज्ञान, तो ज्ञान जो है एक प्रकार से कि भगवान को स्वरूप है। और तम नाम है जड़ माया को, तो माया से परे जो है तुम जो कि चेतन है सो परमात्मा को स्वरूप है, ऐसे जो परमात्मा को जो स्वरूप है वो तम से परे। कैसे कि ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप, केवल समझो कि अपने शुद्ध चेतनता सारे मनुष्यों के भीतर में जो एक प्रकार से ज्ञातापन है वो सब भगवान से ही है। जितने जो है सब में जो ज्ञानकारी है, ज्ञातापन है, दृष्टा साक्षी पढ़ो है, तो भगवान से ही है। भगवान समझो कि दृष्टा साक्षी चेतन है। इस प्रकार से उस चेतन को जो ध्यान है, चेतन को जो ज्ञान है, ज्ञान के अनुसार ही जो एक समझ है, ज्ञान के अनुसार ही, और मैं के अनुसार मैंने बिल्कुल लक्ष्य है कि भाई एक चेतन ही है, तो वो इस प्रकार के समझ करके मैं जो स्थिति है वो ही ध्यान है। तो ये एक बहुत ही उच्च कोटि की चीज है। तो कैसे वो परमात्मा का स्वरूप है कि ये स्वरूप है, जानने में आने योग जो चेतनता, जानने में आने योग जो, जैसे भगवान दृष्टा है, साक्षी है, चेतन है, बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, इन शब्दों को सुनकर करके जो एक चेतनता को भाव दिल के मावे है वो एक प्रकार से भगवान को चिन्मय स्वरूप है, जानने में आने वालो चिन्मय स्वरूप। और वो ज्ञान के द्वारा ही जाने जा सके, ज्ञान गम्यम, ज्ञान के द्वारा ही बिल्कुल परमात्मा को ज्ञान हो। वो पूछो ज्ञान है कि ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, उस आत्मज्ञान के द्वारा ही आत्मा को ज्ञान हुए, उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही ब्रह्म को ज्ञान हुए। तो ब्रह्म जो है चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, इस प्रकार वो जो अपने ज्ञान के द्वारा जो जाननो है वो असली जाननो है। और वो परमात्मा जानने के योग, ये स्वरूप परमात्मा सबके हृदय के मां आत्मा रूप से विराजमान है, चेतन रूप से विराजमान है। हम सबके भीतर में जो चेतनता है, जो ज्ञातापन है, वो परमात्मा का स्वरूप है। इस प्रकार से परमात्मा के स्वरूप जो अनुभव है, जो ज्ञान को मार्ग है, तो इस ज्ञान के मार्ग से उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, निर्गुण निराकार ब्रह्म की प्राप्ति हो जावे। देखो विस्तार समझो, युक्ति आज प्रातः काल बतलाई थी, आनंद की प्रधानता थी। अब जो बात कही उसमें ज्ञान की प्रधानता, चेतनता की प्रधानता है, तो केवल चेतनता की प्रधानता, चेतनता की प्रधानता से भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ये सब जो मैंने बताया चेतनता के विशेष बताएगी कि परमात्मा चिन्मय स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। इतना जो ज्ञान हो जाए उससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा है। ये परमात्मा है कैसा है इस बात को तुम परमात्मा ही बतला नहीं, क्योंकि ये बात एक प्रकार से थी उसके अधिकार की है। हम तो परमात्मा को जान नहीं सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं है, ये तो उसका कर्तव्य है, परमात्मा का फर्ज है कि वो बतला नहीं कि मैं कैसा हूँ। हम तो इतना ही मान सकते कि भगवान है यानी परमात्मा है, तो परमात्मा के मां जो विश्वास कर रहे हैं या बड़ी ऊंचे दर्जे की चीज है। परमात्मा है माने भाव रूप एक प्रकार से, वे कैसा है वे सुंग बताओ कि कैसा है। ये निश्चय रखे, ये खूब इसमें श्रद्धा रखे, दृढ़ विश्वास रखे कि परमात्मा है, इसमें कोई शंका की बात नहीं। तो ये विश्वास रखने से थी वे में धीरता, वीरता, गंभीरता आ जाती है। ये विश्वास रखने से उसमें निर्भयता आ जाती है, क्योंकि जब वो सब जगह परमात्मा ने देखता है कि ये विश्वास करता है कि परमात्मा है, फिर चिंता कौन बात की, भय कौन बात का, सुख कौन बात का, समझो कि ये सब एकदम अपने खत्म हो जाते हैं। और वो उसकी सारी क्रिया समझो कि जो इस प्रकार से परमात्मा को मान लेता है कि परमात्मा की सत्ता को मान लेता है, उसकी सारी क्रिया समझो कि भगवान के आदेश के अनुसार, उसके हुक्म के अनुसार स्वाभाविक क्रिया करती है। भगवान के विपरीत तो उससे कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो वो सब जगह में भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा है, देख रहा है, तो भगवान के विपरीत उसकी कार्रवाई कैसे हो सकती है, हो ही नहीं सकती। तो ये एक प्रकार से जो साधन है बहुत उच्च कोटि का साधन है। इसी प्रकार से थी भगवान सगुण साकार का जो स्वरूप है और उसका जो ध्यान है वो भी एक प्रकार से कल्याण करने वाला है, क्योंकि भगवान का जो साकार जो रूप है वो भी अपने समझ के अनुसार मनुष्य करता है, और भगवान का निराकार स्वरूप का भी जो ध्यान कर रहा है तो अपने समझ के अनुसार करता है, और समझ के अनुसार जो ध्यान करता है उससे परमात्मा का स्वरूप असली बहुत ही विलक्षण है, और वो प्राप्त होने से ही मनुष्य को जान सकता है। और वो प्राप्त होना अपने हाथ की बात नहीं है, वो भगवान के हाथ की बात है। हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो भगवान अपने हाथ की जो बात है उसको जरूर करेंगे, ये विश्वास रखना चाहिए। हम लोग एक प्रकार से तीसरे जो कर्तव्यच्युत हो सकते हैं, किंतु भगवान कभी कर्तव्यच्युत नहीं हो सकते। ये कोई समझो कि संभव ही नहीं है कि भगवान कर्तव्यच्युत हो जावे। तो भगवान एक प्रकार से समझो कि अपने कर्तव्य का पालन कर ही रहे, उनका जो फर्ज है वो तो कर ही रहे, और हम ये मान लें कि वह कभी गड़बड़ हो ही नहीं सकती, तो और भी विशेष रूप से वो करने लग जावे, और सब जगह के बीच के मौसम जो कि भगवान का दिग्दर्शन होने लग जावे, तो भगवान को हर वक्त सब जगह के बीच के वहां प्रत्यक्ष की माफक देखना चाहिए, चाहे अपने बुद्धि के अनुसार जो सच्चिदानंद स्वरूप जो निर्गुण निराकार स्वरूप है उसको देखो, और चाहे समझो कि सगुण साकार को, बात एक ही है। और सगुण साकार के मां जो अपना इष्ट देव का जो स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण जी का, भगवान श्री राम जी का, भगवान शिव जी का, भगवान विष्णु का, सब एक ही है। जिसका जो इष्ट हो वो अपने इष्ट देव को देख देख करके मुग्ध हो एक प्रकार से, तो उस सगुण साकार के ध्यान मात्र से कल्याण हो सकता है। वो ध्यान होना चाहिए एक प्रकार से निष्काम भाव से, और वो ध्यान समझो कि भगवान को जो रूप है, रूप और लावण बहुत ही मधुर है, उस माधुर्य भाव के मां एकदम मग्न होकर के मां को देखे तो क्षण क्षण के मां बने आनंद आनंद प्रतीत हो, और वो भगवान को स्वरूप जहाँ नेत्र जा वहीं देखे, जहाँ मन जा वहीं देखे, और इस प्रकार से एकदम प्रत्यक्ष की जो बने सो अनुभव करें भगवान के स्वरूप को, चरणों से लेकर मस्तक तक भगवान इनके जो चरण है बड़े कोमल, बड़े सुंदर और अलौकिक कोमल, जिसके छूने से शरीर में रोमांच होने लग जा। इसी प्रकार से भगवान के दोनों पीढ़ियां, दोनों गोडे, दोनों जंघ हैं, और इसी प्रकार से भगवान को अपने सारो शरीर, भगवान की जिया कमर खूब पतली, नाभि गंभीर और छाती जिनकी चौड़ी और भुजा एक उसे खूब लंबी, अजान बाहु और गला जिनका बहुत सुंदर, ठोड़ी एकदम चमकीली और होठ एकदम जीव फल की माफक है, और मानो अमृत सूर्य है, और दांतों की पंक्ति मानो एक प्रकार से कोई मोतियों की पंक्ति, और नासिका से सुंदर कपोल, गाल एकदम चमक रहे, कान जिनके विशाल है, दोनों नेत्र एकदम खुले हुए हैं, प्रेम से भगवान देख रहे हैं, नेत्रों के द्वारा प्रेम की, ज्ञान की, आनंद की मानो वर्षा कर रहे हैं, एकदम प्रत्यक्ष भगवान समझो कि अपने वितीर्ण कर रहे हैं अपने गुणों का, क्षमा दया शांति समता संतोष सरलता आदि जो भगवान के मां अनंत जो गुण है उनकी एकदम भगवान वर्षा कर रहे हैं, और हम उससे मगन हो रहे हैं भगवान के दिव्य गुणों करके समझो कि आपने हम मगन हो रहे हैं, सारे दिव्य गुण मानो सागर की माफक हमारे पर उजड़े हुए हैं, दिव्य गुण जो है वो निराकार होते हैं, तो ऐसे दिव्य गुणों के सागर के मां मानो हम डूबे हुए हैं, हमारे बाहर भीतर नीचे ऊपर सब जगह के मां समझो कि उस विज्ञान परमात्मा के गुण परिपूर्ण हो रहे हैं, और वे भगवान हम लोगों को अपने प्रेम से देखते हैं और परम दया भाव से देखते हैं, करुणा भाव से देखते हैं, हम लोगों को समभाव से देखते हैं और देख करके नेत्रों के द्वारा समझो हम लोगों को तृप्त कर रहे हैं, मुग्ध कर रहे हैं और हम एकदम उसके प्रेम में, आनंद में, ज्ञान में एकदम मुग्ध हो रहे हैं। ये प्रेम जो है आनंद है, ज्ञान है, समता है, शांति है, सरलता है, संतोष है, क्षमा है, ये सब भगवान के अनंत गुण हैं। हर एक ये गुण चिन्मय है, चेतन है और दिव्य है, अलौकिक है। ऐसे गुणों के सागर में हम स्नान कर रहे हैं, वे हमारे मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, शरीर में, रोम रोम में, अणुओं के मां परिपूर्ण हो रहे हैं और अवगुणित आदि जो हमारे सब नाश हो गए उनके आभास स्थिति उनके समझो। ऐसा भगवान का ध्यान हम हर समय में करें, भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री विष्णु का, सबका ही ध्यान इस प्रकार से हो सके। इसलिए मैंने एक प्रकार से माने सब कोई को गुंजाइश दी, इसलिए किसी स्वरूप का नाम नहीं लिया। तो ऐसा जो भगवान का जो एक स्वरूप है, जिनका ललाट एकदम चमक रहा है, जिनके केश एकदम चमक रहे हैं, जिनके मुखारविंद के चारों तरफ समझो अपने प्रकाश की किरण खिली हुए, जिनके वहाँ पृथ्वी से बढ़कर के क्षमा, चंद्रमा से बढ़कर के जिनमें शांति है, कामदेव से बढ़कर सुंदरता है, ऐसा भगवान का एक अलौकिक स्वरूप है जिसके रूप और लावण को देख करके मनुष्य एकदम मोहित हो जाता है, मानो भगवान हमारे ऊपर जादू कर रहे हैं, नेत्रों की दृष्टि डाल करके अरे उनको मानो मोहित कर रहे हैं। इस प्रकार से थी समझो कि भगवान के सगुण साकार स्वरूप को देखे, जहाँ नेत्र जाओ वहीं देखे, जहाँ मन जाओ वहीं देखे। भगवान तो निराकार रूप से सब जगह है ही और साकार रूप से थी भगवान एक प्रकार से जहाँ देखे वहीं प्रकट हो सकते हैं, व्यापक ठहरे ना। इस वास्ते सब जगह भगवान है, ऐसा कोई स्थान नहीं कि जहाँ भगवान नहीं हुए। ऐसे अपने इष्ट देव भगवान के स्वरूप को देख देख के मुग्ध हुए तो ये ध्यान से थी ऐसा कल्याण हो जाए। वाणी से उसके नाम का जप करें और मन से उसका ध्यान करें, बुद्धि से उसका निश्चय करें, बुद्धि से ये निश्चय करें कि भगवान है, इसमें कोई शंका की बात नहीं। और मिलते हैं और मिले हैं और हमको फिर क्यों नहीं मिल सकते, हमको भी जरूर मिलेंगे, ऐसा हम विश्वास करें तो बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी शांति होती है। और एक जितनी श्रद्धा बढ़ती है, जितना विश्वास बढ़ता है, उतने साथ साथ में प्रेम बढ़ता है, जितना प्रेम बढ़ता है उतनी प्रसन्नता बढ़ती है, और जितनी प्रसन्नता बढ़ती उतनी शांति होती है। इस प्रकार से थी समझो कि साथ साथ के बीच के माँ भगवत भाव से वो भावित होकर के एकदम मुग्ध हो जाता है तो भगवान उसको तुरंत ऐसा प्राप्त हो जाते हैं।
प्रिय नारायण नारायण
सार जो बात है वो अपने चल रही है। एक तो सार बात यह है कि वैराग्य की बहुत ही आवश्यकता है, चाहे कोई भगवान की भक्ति करें, चाहे कोई ज्ञान को साधन करें, वैराग्य की सब में आवश्यकता है। संसार में जो आसक्ति है यह बहुत ही खराब चीज है, सब अनर्थों की मूल है। सारे जो पाप पैदा होते हैं वो आसक्ति से पैदा होते हैं और मनुष्य का जो पतन होता है तो आसक्ति के कारण ही होता है। स्त्री में, पुत्र में, धन में, ईश्वर जी के मां शरीर में और मान बड़ाई में, प्रतिष्ठा में जो आसक्ति है, राग है, वो सब अनर्थों की मूल है। राग के अभाव का नाम ही वैराग है। तो ये आसक्ति क्यों है कि संसार के वहां सुख बुद्धि होने के कारण से। संसार जो दुख रूप है इसमें जो सुख बुद्धि है इसके कारण से उसमें आसक्ति है। सुख सब कोई चाहते ही है पर वास्तव में सुख है नहीं। जैसे पतंगीय जानवरों की दीपक के मां आसक्ति है, दीपक की शिखा में क्यों आसक्ति है कि उनको सुख बोध होता है, ये प्रणाम नहीं समझते कि प्रणाम के वहां तुम्हारे लिए ये कार है, इसलिए वे दौड़ दौड़ करके विषयों की तरफ जाते हैं। तो वास्तव के बीच के वन जो है वे तो जानवर हैं, उनको तो ये पता नहीं है कि ये तुम्हारा काल है। उनको तो अपने आंखों से सुख प्रतीत होता है, तो चमक दमक देख कर करके और उसके नजदीक जाते हैं, झुस जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसी प्रकार संसार के जितने जो भोग हैं, ये दीपक की शिखा के समान है। इसे संसार के भोगों के वहां जो चमक दिखती है, चमक दमक है, वो एक प्रकार से मोड़े मारी है, उसमें सुख का अनुभव होता है, किंतु वो सुख वास्तव में नहीं, वो क्षणिक एक प्रकार से सुख प्रतीत होता है। आखिर के बीच के वहां संसार के विषय भोग जो हैं, ये हमारे लिए मृत्यु से भी बढ़ करके है। मृत्यु से बढ़कर ये है कि जो पतंगे जानवर हैं, उनका तो एक ही जन्म के वहां मरण होता है, फिर सदा के लिए तो नहीं, किंतु विषयों में जो आशक हो जाता है वो तो जन्मता मरता रहता है, इस वास्ते मृत्यु से भी बढ़ करके है। तो संसार के विषय भोगों को साक्षात विष के समान समझ करके इसका त्याग करना चाहिए, और त्याग तभी होता है कि जब वैराग होता है। बिना वैराग के उनका त्याग होना संभव नहीं है, कठिन है। तो ये सुख बुद्धि क्यों है? अज्ञान के कारण से। जैसे पतंगे जानवरों को ये ज्ञान नहीं है, उनमें बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, इसलिए एक एक दूसरे काल के मुख में जाकर पढ़ते हैं। तो हम लोग मनुष्य होकर के भी हम लोगों को यदि ज्ञान नहीं है तो जानवरों के समान ही हुए। हम लोग मनुष्य तो हम लोगों को ज्ञान होना चाहिए। संसार के जो विषय भोग हैं, उसमें जो हमारा समय जाता है, वो समय तो एक प्रकार से काल के मुख में गया ही, किंतु विशेष दुख की बात तो यह है कि भावी के बीच के वहां एक प्रकार से हमारा सर्वनाश हो जाता है। भावी के बीच के वहां समझो लाखों करोड़ों वर्षों का, लाखों करोड़ों जन्मों का कोई ठिकाना नहीं। इस बात को ख्याल में रखकर करके और इसी का नाश करना चाहिए, इस आसक्ति का नाश करना चाहिए। इसी का नाम अज्ञान है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि संसार जो दुख रूप है, इसमें जो सुख बुद्धि, इसका नाम अभी